तो 14वां अध्याय भक्ति की पात्रता, इसमें हम ये चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार में 13वें अध्याय के अंत में कहा गया था कि वर्णाश्रम के जो कर्तव्य होते हैं, जिनको कर्म कहते हैं, वो भक्ति के अंग नहीं माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति युक्त नहीं है वो भी भक्ति का अंग नहीं माना जाता है। और भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती है, भक्ति में प्रगति करने के लिए केवल भक्ति की ही आवश्यकता है। तो भक्ति में प्रगति का कारण भक्ति ही है और कुछ नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति स्वतंत्र है, स्वावलंबी है। ज्ञान और वैराग्य करने से क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य के पथ जो हैं, उनका पालन हमें नहीं करना है, परंतु ज्ञान और वैराग्य को, जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है, वो स्वीकार करना है। इसमें अंतर आप समझ गए ना ठीक से? ज्ञान और वैराग्य के पथ के मार्ग जो हैं, ज्ञान योग या वैराग्य का मार्ग, तो आप समझ गए? बताइएगा इसका क्या मतलब है, ज्ञान और वैराग्य के पथ, और दूसरी ओर ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के लिए अनुकूल है। ज्ञान का पथ कौन सा है?
ज्ञान और वैराग्य का पथ भक्ति की ओर।
हाँ, परंतु जब हम कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में जा रहा है, हाँ, तो ज्ञान मार्ग क्या है? जब हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में चल रहा है, तुम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो ज्ञान मार्ग वो मार्ग है जिसमें साधक ज्ञान का अनुशीलन करता है निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना? ये ज्ञान मार्ग है या ज्ञान योग है? ज्ञान मार्ग। तो इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, वैराग्य का लक्ष्य है ज्ञान, ज्ञान का लक्ष्य है मुक्ति, और भक्ति से तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं सहज ही। परंतु भक्ति में निराकार मुक्ति का लक्ष्य नहीं रखा जाता है, भक्ति में लक्ष्य केवल भक्ति का ही होता है। भक्ति का लक्ष्य भक्ति ही है। तो भक्ति में ऐसे ज्ञान और ऐसे वैराग्य की आवश्यकता है जो भक्ति को बढ़ाए, परंतु भक्ति किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। शुरुआत में ऐसे ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रभुपाद जी 14वें अध्याय की शुरुआत में बता रहे हैं, परंतु आगे चल के इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और केवल वो निष्ठा या तीव्र इच्छा की आवश्यकता है भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। केवल भक्ति के अंगों का सहारा लेकर व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति में हमें सहायता नहीं देता, ऐसे ज्ञान और वैराग्य को हमें त्यागना है, वो भक्ति के अंग नहीं कहलाए जाते। और हम ये भी देख चुके हैं कि भक्ति कार्य है और कारण भी है, क्योंकि ये परम है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य दोनों ही है। और ऐसे ज्ञान मार्ग में चलने से, अभी अंतर आप जान गए ना, ज्ञान मार्ग और ज्ञान में, तो ऐसे ज्ञान मार्ग में चलने से हृदय के ऊपर क्या परिणाम होता है? कठोर हो जाता है। क्यों कठोर होता है? अहंकार हो जाता है। लेकिन कार्य क्या होता है? उसको ज्ञान में प्रगति करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसने कुछ कहा? वो वैराग्य से, वो वैराग्य के लिए ज्ञान मार्ग में क्या है कि उसको विविध प्रकार के दर्शनों का खंडन करते रहना पड़ता है। उसका काम ही वही है, अन्यों का जो है खंडन करते रहना। इससे क्या हो जाता है? हृदय कठोर हो जाता है। साथ साथ में वैराग्य से, जो कि ज्ञान मार्ग के लिए किया जाता है, उससे हृदय कैसे कठोर हो जाता है? कष्ट सहन करना पड़ता है। किसके लिए कष्ट सहन करना पड़ता है? हाँ, नहीं वह घूम गया हो गया नहीं, इंद्रिय सुख से बच के रहने के लिए उसकी कामनाएं बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी इच्छाओं को दबा के रखता है व्यक्ति कृत्रिम रूप से, और ऐसे दबा दबा के बहुत दुख का अनुभव करता है, लेकिन फिर भी उसे सहन करता है। और फिर ऐसे सहन करते रहने से पे उसका हृदय कठोर हो जाता है और एक प्रकार का अहंकार भी आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि, लेकिन वो भक्त बनने के लिए वैराग्य का प्रयोग नहीं कर रहे थे। जहां भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद आ जाता है। वो ज्ञान, वो वैराग्य जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों के गुण चरित्र में वैराग्य प्रधान था। यहां देखिए, तुष्ट है गौर भगवान, जिसको देखकर गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भक्त को चाहिए कि वो एक भोगी का जीवन जिए, ऐसा नहीं। जब हम कहते हैं कि वैराग्य की आवश्यकता नहीं है भक्ति में, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त को भोगी बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं वैराग्य के बारे में, अभी अभी आने वाले हैं, अभी ये चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा, परंतु हम उस वैराग्य की बात कर रहे हैं जो हमें ज्ञान मार्ग में आगे ले जाता है और जो हमारा हृदय को, हमारे हृदय को कठोर बना देता है। एक भागवत में श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है वो, किसी को पता है? आपने प्रश्न पूछा इसलिए हम कह रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम, कि भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वयं ही आ जाते हैं साधक के अंदर, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दासी हैं भक्ति के। या ऐसा समझ लीजिए कि दो पुत्रियां हैं और भक्ति माता है, छोटे छोटे लड़कियां हैं, जहां मां जाती हैं पुत्रें पीछे पीछे जाती हैं। तो जहां भक्ति है ज्ञान भी आ जाएगा भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान, और वैराग्य भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य ये हृदय को कठोर बनाते हैं, लेकिन भक्ति जो है, भक्ति करने से हृदय क्या होता है, कोमल हो जाता है। क्यों? कल हम चर्चा कर रहे, परसों, भक्ति सुकुमार है, स्वभाव से ही सुकुमार है। क्यों है सुकुमार, कोमल या सुकुमार क्यों है? क्योंकि ये भगवान के रूप गुण लीला आदि के श्रवण मात्र से, श्रवण स्मरण कीर्तन मात्र पर आधारित है, अन्यों का खंडन करने पे आधारित नहीं है। हालांकि शुरुआत में हम ये सब करते हैं, नास्तिकवाद का खंडन करते हैं और भोगवाद का खंडन करते हैं, बौद्धवाद का, शून्यवाद का, निर्विशेषवाद का, ऐसे अलग अलग वादों का खंडन करते हैं जो वाद भक्ति के विरुद्ध है। तो वो इसलिए करते हैं ताकि भक्ति मार्ग में हमारी श्रद्धा बढ़े। ये शुरुआत की आवश्यकता है, लेकिन जब भक्ति में हम प्रौढ़ हो जाते हैं या हम परिपक्व हो जाते हैं, तब ऐसे खंडन पर हमारी भक्ति आश्रित नहीं रहती है। शुरुआत में हमारी श्रद्धा को विकसित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसा खंडन आवश्यक होता है। अगर हम पहले जब भक्ति में आए, अगर हमने सुना नहीं होता कि इंद्र तृप्ति कितना हानिकारक है, तो फिर हम भक्ति में आए ही नहीं होते। परंतु ऐसे खंडन पर भक्ति आधारित नहीं है, भक्ति केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पे आधारित है। अच्छा, तो फिर हम इस वैराग्य की चर्चा कर रहे थे अब तक, जो वैराग्य ज्ञान मार्ग में प्रयोग किया जाता है, है ना, जिस वैराग्य से, जिस ज्ञान से हृदय कठोर हो जाता है। वैराग्य का एक लाभ यह है कि इससे हम संसार से निरासक्त हो सकते हैं, विरक्त हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई उपाय है, ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम संसार से विरक्त होते हुए भी अपने हृदय को कठोर नहीं बनाते हैं, ऐसे कोई वैरागी की पद्धति है क्या, ये प्रश्न उठता है ना। अगर ज्ञान मार्ग के वैराग्य से विरक्ति तो होती है परंतु हृदय कठोर हो जाता है, लेकिन क्या ऐसे वैराग्य की पद्धति है जिसको करने से विरक्ति भी हो जाएगी और हृदय कठोर नहीं होगा? तो उत्तर है हाँ, और ऐसे वैराग्य को कहते हैं युक्त वैराग्य। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति मार्ग में। तो कोई चार्ट को लगाएंगे, उसको मतलब उसको एक शीट को फाड़ कर रख देंगे, युक्त वैराग्य, और दोनों उसके बाद वाला भी फाड़ दीजिएगा। आप में से कितने भक्त इस युक्त वैराग्य के श्लोक को जानते हैं, या आपने सुना है, अनासक्तस्य विषयान, सुना है ना? तो ये आपको कंठस्थ करना है, ये और अगला श्लोक फल्गु वैराग्य, जो व्यर्थ का वैराग्य है, जो सच्चा वैराग्य नहीं है, झूठा वैराग्य फल्गु वैराग्य, जो बिल्कुल उपयुक्त है उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। सारे लिख के हो गए? अरे वाह, बहुत जल्दी हो गए। हम समय पे वो लिख के नहीं देते हैं, इसलिए आपको क्लास थोड़ा बहुत मिस हो जा रहा है, लेकिन हमें भी समय नहीं मिलता। आते आने के पहले भी हम जल्दबाजी में ऐसे लिख के चले आते हैं। युक्त वैराग्य, अनासक्तस्य विषयान् यतारम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अच्छा, अभी आपका काम अभी क्या है, प्रयत्न कीजिएगा, गलती हो कोई बात नहीं, एक अंदाज बस आइडिया मिल जाए कि श्लोक में क्या कहा गया है, उतना पर्याप्त है। रह गए, अच्छा तो इसको फाड़ के ये दो वाले दो जो है उनको फाड़ लीजिएगा। अच्छा तो लिख लिए ना आपने दो श्लोक, वो ये श्लोक लिख लिया तो मतलब बता सकते हैं, प्रयत्न कीजिएगा। हाँ, जैसे बिहार में कहते हैं मोटा मोटी बोल दीजिए, बंगाल में मोटा मोटी बोल दीजिए। हमसे एक भक्त कह रहे थे मोटा मोटा, मोटा मोटी क्या है ये, मोटा मोटी मोटा मोटी कह रहे मोटा मोटी बोल दीजिए, बंगाल बंगला में ऐसा कहते हैं ये। हाँ, त्यागने की बात यह नहीं की गई है, हालांकि आप जो कह रहे हैं वो सही है, तात्पर्य वही होता है, परंतु फिर भी शब्दों का भेद करके बताइए शब्दार्थ। अनासक्तस्य पहले से शब्द से शुरू कीजिए, अनासक्तस्य मतलब हाँ विषयों के प्रति अनासक्त होना, तो ये युक्त वैराग्य का प्रथम लक्षण है। क्या है कि विषयों से अनासक्त होना चाहिए, वो ज्ञान मार्ग के वैराग्य में है और भक्ति के वैराग्य युक्त वैराग्य में भी है कि विषयों से अनासक्त होना चाहिए। इंद्रिय भोग के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु को। यथा अर्हम मतलब यथा अर्हम, जैसा उचित है हमारे भक्ति के लिए, जितना आवश्यक है हमारे भक्ति के लिए, जितना जरूरी है उतना भक्ति के लिए। उपयुञ्जतः है मतलब प्रयोग किया जाता है, निर्बंधः कृष्ण संबंधे, निर्बंध कृष्ण संबंधे मतलब निर्बंध मतलब बारंबार निरंतर न भूलते हुए कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, उच्यते मतलब कहा जाता है, तो ऐसे वैराग्य को युक्त वैराग्य कहा जाता है। युक्त मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित। सही व्यवहार, सच्चा वैराग्य, सही वैराग्य वही है जिसमें पहली बात व्यक्ति विषयों से अनासक्त रहता है, और दूसरी बात कि जितना भक्ति के लिए उचित है उतना ही इन वस्तुओं का या विषयों का प्रयोग करता है कृष्ण के संबंध में केवल, और वो भी उसी धारणा से वो करते रहता है प्रयोग। कृष्ण से जो संबंधित है ऐसे वस्तुओं को, कृष्ण की सेवा में जो इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं चीजों का वो प्रयोग करता है, कृष्ण का संबंध देखता है। अच्छा तो पढ़िएगा यहां से, वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर 116 पेज में, हाँ भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर मतलब अनासक्त से विषयान, ठीक है ना। अभी इसी श्लोक का तात्पर्य चल रहा है अभी जो आप जो पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए।
कृष्ण से संबंधित हर भोग के वस्तु को ग्राम समझे।
हाँ मतलब यथारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे, ये लाइन में ये बोला जा रहा है। अभी इसका उदाहरण आगे श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, पढ़िएगा।
भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वादिष्ट क्रिया की पुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है, अतः इस दशा में अपनी जीभ की नहीं अपितु कृष्ण की पुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं, तब वह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाए लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न किए जाए कर लिए जाए उन्हें भोजनार्थ न किए जाए।
तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं प्रसाद का। अभी भक्ति मार्ग में हम ये नहीं कहते कि आपको इंद्रिय तृप्ति को शून्य बनाना है। हम क्या कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति को इस प्रकार से करना है कि भगवान से जोड़ के करना है, क्योंकि इंद्रियों को थोड़ा बहुत तृप्त करना ही है। अगर भूख लगी है तो खाना ही है। अति वैराग्य करने से भक्ति नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहां उदाहरण दे रहे हैं कि ठीक है, अगर अपने जिह्वा को संतुष्ट करना है, उदर को संतुष्ट करना है, तो इस प्रकार से करो कि भगवान की संतुष्टि के लिए भोग चढ़ाओ, उनको अर्पण करो कुछ भोजन और फिर उसे स्वीकार कर लो, ठीक है। तो ये युक्त वैराग्य हो जाता है। आगे भी और व्याख्या करेंगे प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य के बारे में। अगर हमें नहीं खाना होता तो भगवान को भोग चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होती, है ना। अगर हम नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। तो यहां भगवान ने यहां ऐसे पद्धति बना दी है कि जीने के लिए हमें खाना है, भोजन को ग्रहण करना है। तो केवल यही इतना ही बताया जाता है कि भोजन तो ग्रहण करना ही है जीवन के लिए, लेकिन कृष्ण से संबंधित निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध में अपने इंद्रियों को तृप्त करो, और वो भी इतना यथारम। तो कोई कहे भाई प्रसाद कृष्ण के संबंध में है ना, दिन भर प्रसाद खाते रहो, कृष्ण का तो प्रसाद है तो खाते रहो। तो नहीं, यथारम भक्ति के लिए इतना उचित है उतना ही करो। रूप गोस्वामी बड़े वैज्ञानिक थे, भक्ति के वैज्ञानिक, बड़े ही कुशलता से उन्होंने हर एक शब्द का प्रयोग किया है। कोई रास्ता नहीं छोड़ा बीच में, कोई उल्टा अर्थ निकाले, कोई इसका जो है गलत अर्थ लिखा के निकाल के कुछ करे। तो कृष्ण के संबंध में है तो भोजन कृष्ण के संबंध में कैसे किया जाता है? भोग अर्पण करके, नैवेद्य जब हो जाता है प्रसाद तब हम ग्रहण करते हैं। तो फिर कितना ग्रहण करना चाहिए? उतना ही जितना भक्ति के लिए ठीक है। कृष्ण प्रसाद भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो अवश्य जब हमें भूख होता तब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, परंतु यह सिस्टम ही भगवान ने ही तो बनाया है। तो कृष्ण के संबंध में हमें करना है। और कभी कभी जब हमें नहीं खाना होता है तब भी हम भोग चढ़ाते हैं ना, जैसे उपवास के दिन या एकादशी के दिन हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, परंतु भगवान के लिए तो एकादशी का उपवास नहीं होता, उनको तो हम अनाज भी भोग चढ़ाते हैं।
समय से भोग लगाते हैं, पहले भोग तो भगवान के
लिए। हाँ, भगवान को भोग लगाकर ही हम फिर ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़िएगा। निर्बंध मतलब हर अवस्था में बार बार करते रहना, निरंतर करते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार हमने कृष्ण प्रसाद खा लिए बाकी बार हम भोग खाते रहेंगे, या नहीं, जब भी खाना है तब कृष्ण प्रसाद ही लेना है, ये इसका तात्पर्य हुआ। उच्यते वैराग्यम, वैराग्यम उच्यते, उच्यते मतलब कहा जाता है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, उवाच उच्यते, ठीक है। तो जो लोग केवल युक्त वैराग्य को नहीं स्वीकार करते और दुनिया के वस्तुओं को केवल कृत्रिम रूप से त्याग देते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। और क्योंकि वो भगवान के चरणों का अनादर करते हैं तो फिर पुनः कोई भौतिक कार्य में आ जाते हैं। तो युक्त वैराग्य इसलिए युक्त कहा जाता है कि वो भक्ति के लिए उपयुक्त है और स्थिरता प्रदान करता है साधक को, और वैसे आगे निरंतर चले जा सकता है अपने लक्ष्य की ओर। उसे पुनः पतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर कोई मेरे पास आए धन लेकर तो मैं हाथ सामने करूंगा, हाँ अवश्य दीजिए, क्योंकि मैं कृष्ण के लिए इसका प्रयोग करने वाला हूं, कृष्ण की सेवा में। परंतु प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ऐसे कोई सन्यासी बाबा आदि हैं, अगर उनके पास कोई अगर व्यक्ति आए पैसे लेकर, वो पीछे हटेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम ये तो माया है, ये भौतिक है, हमने तो त्याग दिया है, हम तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसलिए वो पैसे वगैरह को त्यागते हैं इसको भौतिक समझकर। परंतु कृष्ण प्रभुपाद जी कहते मैं इनको भौतिक नहीं समझता, ये तो कृष्ण से संबंधित है, ये तो लक्ष्मी है जिनका नारायण जिनकी सेवा जिनका प्रयोग भगवान की सेवा में की जानी चाहिए। लक्ष्मी की सेवा नारायण के चरणों में है। तो ये है सूत्र भक्त के लिए। पीछे दे दो, दे दो स्पर्श करना, वही एक ही बात है, फिर तो वो लेते हैं। परंतु अगर कृष्ण के नाम से हम ले रहे हैं और कृष्ण के नाम से लेकर अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वर्जित है, क्योंकि यहां बताया हुआ है सबसे पहले अनासक्तस्य विषयान, अपने लिए नहीं लेना है। अगर केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना है तब हम ले सकते हैं, अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लेना है तो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं लेना है, नहीं प्रयोग करना है उन चीजों को। प्रभुपाद जी कहानी बताया करते, कथा बताया, उपमा दिया करते थे, जो बटुआ नीचे जमीन पे गिरा हुआ है सड़क के ऊपर, आपने सुना होगा, वो उपमा क्या है, एक दृष्टांत बताया करते थे, आपको याद है, किसी का बटुआ गिरा हुआ सड़क के ऊपर गुजर रहा है, वहां से जा रहा है, उसने बटुआ देख लिया, फिर वो कोई उठा लेता है और फिर बटुए को खाली करके वो पैसे इस्तेमाल कर लेता है, ये एक प्रकार का व्यक्ति है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, उसने देखा बटुआ सड़क पे है, वो क्या करेगा, ये तो मेरा नहीं भाई, दूर रखो, दूर रहो, ऐसे मेरा नहीं है तो मैं क्यों छू उसे, बस यहीं पर पड़ा रहने देगा, वो आगे चले जाएगा, दूसरे प्रकार का आदमी है। तीसरे प्रकार का आदमी, बहुत अच्छा, तो इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, तीसरा, तीसरा, और निम्न श्रेणी का कौन है सबसे, जिसने निकाल के पैसे इस्तेमाल कर लिए। तो जो पहला व्यक्ति है वो है भोगी, जो भगवान की संपत्ति को स्वयं इस्तेमाल कर लेता है बिना पूछे, अनुमति नहीं लेता, थैंक यू नहीं बोलता, धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं, भगवान का संपत्ति, भगवान की संपत्ति को चोरी कर लेता है। भोगी। और दूसरा व्यक्ति जो देखता है मेरा तो है नहीं तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो कौन है? त्यागी। त्यागी भोगी और त्यागी। त्यागी इतना जानता है कि ये मेरा नहीं है, इसलिए वो पहले वाले भोगी से श्रेष्ठ है। इतनी तो उसकी नीति वो है कि वो समझ लेता है कि मैं इसी चीज का भोग कर सकता हूं जो मेरा है, अगर मेरा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो त्यागी इतना तो जानता है कि मेरा नहीं है, लेकिन त्यागी की कमी क्या है? वो किसका है ये बटुआ वो नहीं जानता। मेरा नहीं है इतना जान लेता, लेकिन किसका है? किसका है? भगवान का है। और इस बात को केवल भक्त ही जानता है। इसलिए भक्त क्या कहता है? अरे ये सब तो भगवान का है, तो भगवान को लौटाना चाहिए। लौटाना चाहिए अर्थात भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो भक्त ऐसा करता है और इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। तो भक्तों का वैराग्य युक्त वैराग्य है। जैसे गंगा जी का जल गंगा जी को ही पुनः अर्पण करते हैं, या किसी दीप को हम सूर्यदेव को अर्पण करते हैं। दीप में जो अग्नि है वो कहां से आती है? सूर्यदेव से ही तो आती है। तो सूर्यदेव ने प्रदान किया वो अग्नि से हम सूर्यदेव को ही अर्पण कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये सारे संसार की जितने भी दुनिया की संपत्ति है वो सब भगवान की है, हम भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसमें एक चीज हम जोड़ के भगवान को देते हैं, बताइए कौन सी चीज है? भाव, प्रेम। तो भगवान हमारे उपहार, हमारे भेंट के प्रेम में जो प्रेम है उसको स्वीकार करते हैं। वो वस्तु तो उन्हीं की है, वस्तु उन्हीं की है ना, और उन्हीं की रहेगी हमेशा। परंतु जब हम हमारे प्रभुत्व को त्याग कर, भोग की भावना को त्याग कर, सत्य को जान लेते हैं कि ये मेरा नहीं है, केवल भगवान का है, और भगवान को प्रेम प्रेम से, भक्ति भाव से अर्पण करते हैं, तो भगवान बड़े खुशी से स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। भक्ति उपहरितम, जो भक्ति से दिया जाता है तो अश्नामी, मैं उसको स्वीकार करता हूं। अगर भक्ति से नहीं दिया जाता कोई वस्तु तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? जैसे समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अपने माता या पिता को पूछता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो माता या पिता पैसे दे देते हैं बच्चे को, या वो खुद माता पिता के बटुए में हाथ डालता है, पैसे निकाल लेता है और जाके ऐसे कोई वस्तु खरीद लेता है जो कि माता या पिता को बहुत प्रिय है। या हो भी सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति खरीदता है जो माता पिता को आवश्यक न हो परंतु उसे चाहिए खुद, और वो क्या करता है, जाके फिर माता पिता को उनके जन्मदिवस पर भेंट दे देता है कि आपके लिए है। अब पैसा कहां से आया? किसका था पैसा? माता पिता का था। तो बच्चे ने क्या किया, उन्हीं से पैसे लिए और उन्हीं के लिए कुछ खरीद के दिया। तो दिया तो उस भेंट में क्या मिला हुआ था? प्रेम मिला हुआ था। इसलिए माता पिता स्वीकार करते हैं, वो डांटते नहीं, अरे मेरे ही पैसे लिए और मुझे ही लौटा रहे हो। हाँ, क्योंकि बच्चा उस पैसे, उस भेंट में कुछ मिला के दे रहा है जो कि बहुत ही आस्वादनीय है, रस है उसमें। उसी प्रकार से जब हम इस दुनिया की चीजों को उठाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें भक्ति भाव से हम भोग चढ़ाते हैं, भगवान को ही अर्पण करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, कोई गाड़ी होती है ना, वो खिलौने की गाड़ी चाहिए उसे, तो बाजार में जाके खरीदता है गाड़ी और फिर पिताजी से कहता है ये आपके जन्मदिवस पर ये गाड़ी आपके लिए है। उसे पता है कि पिताजी थोड़ी गाड़ी लेकर खेलने वाला है। कौन खेलेगा गाड़ी लेकर? खुद खेलेगा। लेकिन पिताजी बड़े खुशी से स्वीकार कर लेते हैं और देते किसको है फिर? वो आप बच्चे को ही देंगे ना, वो जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन पिताजी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपका प्रश्न था कि खाना चाहते हैं हम, लेकिन हम जब खाना चाहते हैं तो भगवान को भोग चढ़ाते हैं, है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति भाव से कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान उस भोग को स्वीकार करके क्या करते हैं? उसको गायब कर देते हैं, थाली को, प्रसाद, पूरी थाली रह जाती है ना, तो वो है भगवान का प्रसाद। भगवान अपने आंखों से स्वीकार करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, फिर अपना दिव्य उच्चिष्ट उसी में छोड़ देते हैं, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। जो क्योंकि ये भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ है, इसलिए भगवान उसको लेते हैं। हालांकि भगवान को प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को भूख नहीं लगी हुई है, भूख हमें लगी हुई है, लेकिन भगवान बड़े खुशी से स्वीकार करते हैं। ठीक है? और इसके विपरीत जो ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं नहीं ये तो भौतिक है, हम छुएंगे नहीं, वो त्यागी हैं। तो उस प्रकार का वैराग्य जो है उसे फल्गु वैराग्य कहा जाता है। फल्गु, फल्गु मतलब जो व्यर्थ है, तो झूठा है। बिहार में एक नदी है फल्गु नदी, इसकी विशेषता कौन जानते हैं? तो कोई चलेगा तो ऊपर चल सकते हैं, लेकिन नदी कहाँ है? नदी नीचे से चल रही है तो दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता, सच्चा नहीं है ये। तो उसी प्रकार से हाँ, तो फल्गु वैराग्य का लगा नहीं, फल्गु वैराग्य ये ऐसा व्यवहार वैराग्य है जो ठीक नहीं है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु उच्यत कथ्यते। अच्छा, अभी आपको हमें समझाना है, हमें नहीं पता चला इसका अर्थ क्या है, बताइए क्या है, क्या कहना चाहते हैं रूप गोस्वामी? प्रापंचिकतया ये कौन से शब्द से आता है? प्रपंच। प्रपंच ये शब्द क्यों आता है? ये प्रपंच है, ये संसार है ना, इसको प्रपंच कहते हैं। तो प्रपंच प्रापंचिकतया कि ये संसारी है, ये भौतिक है। बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से, ऐसे मति से, ऐसे विचार से अगर कोई व्यक्ति हरि संबंधी वस्तुनः, हरि से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो हरि की सेवा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को त्यागता है ये सोचकर कि ये भौतिक है, परित्यागो, जो परित्याग करता है, तो ऐसा वैराग्य है, ये फल्गु वैराग्य है। मुमुक्षु भी मतलब जो मुक्ति चाहता है। तो समझ गए आप? हरि संबंधी वस्तुनः, हरि के संबंध में जो वस्तुएं हैं, जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को प्रापंचिकतया, ये भौतिक है बुद्धिया, ऐसे सोचकर परित्यागो, वो त्याग करता है इनका। कोई ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो ऐसा वैराग्य फल्गु कहलाता है। झूठा वैराग्य है, व्यर्थ वैराग्य है। जैसे हमने उदाहरण दिया पैसे का, पैसे ने किसी ने पैसे को, पैसे का दान किसी ने दिया तो हम स्वीकार कर सकते हैं अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाएं तो। ये धन, ये हरि संबंधी वस्तु ना है, है या नहीं है? अगर आप कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा भौतिक नहीं है। अगर आपने भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो अभी ये युक्त वैराग्य के सिद्धांत की व्याख्या प्रभुपाद जी आगे कर रहे हैं, तो आगे पढ़ेंगे। बुद्धिया मतलब बुद्धि, वो मति, वो विचार। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो भी भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यही भक्ति का रहस्य है। और प्रभुपाद जी आगे चल के उदाहरण दे रहे हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, डिक्टाफोन है, जैसे हम लोग अभी ये साउंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, है ना, हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, लाइट, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोग उनसे पूछते हैं कि अगर आप ये भौतिक सभ्यता के विरुद्ध हैं तो फिर आप ये भौतिक सभ्यता, आप भौतिक चीजें इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये चीजें खराब नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं खराब नहीं है अपने आप में, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के पीछे जो बुद्धि है, जो वृत्ति है, वो खराब है लोगों की, क्योंकि वो इन चीजों को इस्तेमाल केवल अपने भोग के लिए करना चाहते हैं। इसलिए हम इन्हीं चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं, बस अंतर इतना ही है। आप प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोगों से कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं कृष्ण भावना में करिए, तो ऐसे भावना से हम कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। तो जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो वस्तु शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है ऐसी चीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते कृष्ण की सेवा के लिए। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कृष्ण की सेवा के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? यहां युक्त वैराग्य का सिद्धांत है कि जो भी उपलब्ध है, जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको करें। हाँ, वो उदाहरण शास्त्रों के विधानों के अनुसार जो नहीं है, जैसे हाँ नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, हाँ जो शाकाहारी भोजन नहीं होता, जो तामसिक और राजसिक भोजन है, उसको हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए भगवान की सेवा में, उसको अर्पण नहीं किया जा सकता है, मादक द्रव्यों को नहीं अर्पण कर सकते हैं। हुँ? तो कृष्ण के वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी दृष्टि है, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अच्छा, अगला पैराग्राफ पढ़िएगा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है ठीक है, तो यहां हमारे मनगढ़ ढंग से किसी चीज को स्वीकारना और त्यागना नहीं चाहिए। किस आधार पे हमें स्वीकारना और त्यागना चाहिए? गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के आदेश के अनुसार, भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार, परंपरा के अनुसार। ऐसा नहीं कि बस हम कोई आविष्कार करें नई पद्धति भगवान की सेवा के लिए, ऐसा नहीं। गुरु, साधु, शास्त्र, तो ये एक चेतावनी दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ऐसा नहीं कि युक्त वैराग्य के नाम पर हम जो मन में आए वो करें, ऐसा नहीं। गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार हमें युक्त वैराग्य के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। आगे श्री रूप गोस्वामी बतला रहे हैं कि जैसे कर्म, ज्ञान, वैराग्य ये भक्ति के अंग नहीं माने जाते, उसी प्रकार से और कई अन्य चीजें हैं जिनका पालन करने से भक्ति के इनको भक्ति के अंग नहीं कह सकते हैं। आपको याद होगा जब अन्याभिलाषिता शून्यम की परिभाषा हम कर रहे थे तो उसमें आदि शब्द आया था। आदि शब्द कहां आया? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अच्छा, उस श्लोक को एक बार दोहराए हम सब, आपको कंठस्थ है वो श्लोक? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु सेवनं भक्तिरुच्यते। शीलनं भक्तिरुत्तमा। सॉरी, हमारी गलती हो गई। हम भी जब गलती करेंगे आपको तुरंत बता लेना चाहिए। हम बोल रहे हैं इसलिए स्वीकार नहीं करना है आपको। आप भी बोलेंगे पीछे, हमारे पीछे पीछे बोल लिया आप भी। अच्छा, तो इसमें ज्ञान कर्माद्यनावृतम, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान कर्म आदि से आवृत नहीं होना चाहिए भक्ति, ढक नहीं जाना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म की चर्चा तो हो गई, आदि शब्द में आता है वैराग्य आदि सब कुछ, और जो चर्चा करने वाले हैं प्रभुपाद जी यहां पर, ये सब आदि में आ जाते हैं कि ज्ञान, जिस प्रकार से ज्ञान और कर्म भक्ति के अंग नहीं माने जाते बल्कि ये भक्ति को ढक देते हैं, उसी प्रकार से सांख्य है, वैराग्य है, योग है आदि। तो ये आदि में क्या क्या आता है यहां प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। विशेष करके यहां पहले पैराग्राफ में, पहले नहीं, अब कौन से पेज में आ गया, 118 में, गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति धन या अनुयायियों के ऊपर निर्भर नहीं है, तो यह भी भक्ति के अंग नहीं है। अगर इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा महत्व देते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारी भक्ति ढीली हो जाएगी। इसलिए परंपरा के, प्रथा के अनुसार हमें चलते रहना चाहिए। और आगे चल के प्रभुपाद रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि आगे कई ऐसे और भौतिक गुण हैं जैसे विवेक है और अन्य भौतिक गुणों का अनुशीलन है, विवेक आदि, इनकी भी आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद भक्तों में आ जाती है। ये भी भक्ति के अंग नहीं माने जाते, इसे विवेक है। हमें विवेक करना चाहिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, परंतु ये विवेक भी भक्ति के अंग नहीं माने जाते। ठीक उसी प्रकार से जो यम या जो हमारे आचरण के लिए जो सिद्धांत रहते हैं, नियम रहते हैं, उनको यम कहते हैं। यम नियम है ना, आपने सुना है ना ये शब्द यम। तो अच्छे व्यवहार के लिए इसे भागवत में बताया जाता है कि अहिंसा या सत्य बोलना या असंग मतलब विरक्ति निरासक्त रहना या नम्र होना या ज्यादा धन संग्रह करने के पीछे नहीं भागना या धर्म के सिद्धांतों के ऊपर श्रद्धा रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज्यादा भौतिक बातें नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना, दया भावना रखना, निर्भय रखना, ये सारे अच्छे गुण माने जाते हैं। तो भक्ति ऐसे अच्छे गुणों के ऊपर भी निर्भर नहीं है, बल्कि भक्ति करने से ये सारे अच्छे गुण खुद ब खुद भक्त में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अहिंसा, जब अहिंसा की बात आती है तो भक्त के लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है हिंसा को त्यागने के लिए। स्वाभाविक रूप से भक्त अहिंसा का पालन करता ही है। आजकल शाकाहारी बनने के लिए कई आंदोलन चल रहे हैं, है ना, परंतु शाकाहारी होकर कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हम शाकाहारी बनेंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से अन्य जितने भी गुण हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम सच बोलेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं। इसके विपरीत जो भगवान का भक्त होता है, केवल भक्ति करने मात्र से उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, सच बोलना, हिंसा नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना, क्षमा भावना रखना मन में, ये सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। उसे कोई शाकाहारी सोसाइटी को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद वो शाकाहारी हो जाता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं। और एक प्रभुपाद जी और एक बात भी, यहां तो केवल गाय बैल की बात की उन्होंने, आगे बंदर की बात भी की। बंदर भी शाकाहारी होते हैं, होते हैं ना, ज्यादातर बंदर शाकाहारी होते हैं। तो केवल शाकाहारी होना ही इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जैसे चोरों के बीच में कोई एक व्यक्ति है जो चोर नहीं है तो बड़ी बात मानी जाती है कि ये चोर नहीं है। अरे भाई, चोर नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन चोरों के समाज में तो बहुत बड़ी बात है ना। उसी प्रकार से मांस खाने वाले व्यक्तियों में से कोई एक शाकाहारी है तो बड़ी अद्भुत बात, अरे ये तो शाकाहारी है, ऐसा है। वैसे अंधों के राजा में कोई कहना होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। पर उन भक्तों के लिए क्या आवश्यकता है ये सब करने के लिए, खुद ब खुद वो तो है ही, शाकाहारी भी हैं, सत्यपरायण हैं, सब कुछ है। और ऐसे भक्त में भगवान के जो देवता होते हैं, देवता गणों के सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। चर्चा कर चुके हैं ना इस बारे में, कौन से संदर्भ, किस संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं। भक्ति के लक्षण, छह लक्षण, कौन से लक्षण, शुभदा। तो शुभदा में हम चर्चा कर रहे थे, याद है आपको, कि कोई वस्तु अगर शुभ है तो उसके कई गुण होने चाहिए। सर्व आकर्षक होना चाहिए, श्रेष्ठ प्रकार का सुख प्रदान करना चाहिए, और साथ साथ अच्छे गुण भी प्रदान करने चाहिए। तो भक्ति ऐसी पद्धति है जो कि साधक को श्रेष्ठ गुण प्रदान कर देती है स्वयं ही। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः। राव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो बहिः। लेकिन जिनके ऐसे अच्छे गुण नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके ऐसे क्या अच्छे गुण हो सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने मन के रथ के ऊपर सवार होकर इधर उधर भटकते हैं, तो इनके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं हो सकते। लेकिन भक्त के अंदर स्वाभाविक रूप से सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। तो ये व्याख्या सुंदर कर रहे हैं, सुंदर तरीके से कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और आगे चल के स्कंद पुराण की एक कथा बताते हैं। स्कंद पुराण की कथा मृगारी की है। मृगारी की कथा तो आप सब जानते हैं ना, संक्षेप में कौन बताएंगे मृगारी की कथा? यहां तो मृगारी का नाम नहीं दिया, परंतु ये कहां कथा आती है बताइए। ये कहानी सुनी है ना आपने, कहां सुनी है, कहां से है ये? चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में है और स्कंद पुराण से मूलतः है। तो बताइए मृगारी की कथा संक्षेप में कोई बताइएगा।
छंदा वो आता है, काफी बचते-बचते आता।
क्या करता है?
वो साफ करते
अपने कपड़े को हल्के से उनको
साफ करते
अलग कर देता, उस साइड में कर देता ताकि वो मरे नहीं, धीरे से उनको आता। फिर
तो फिर वो उनको बहुत आश्चर्य होता है।
किनको?
जो
पर्वत मुनि जो नारद मुनि के साथ आए हुए होते हैं।
नारद मुनि भक्ति की महिमा,
पर्वत मुनि कहते हैं, पढ़िए क्या कहते हैं पर्वत मुनि। जब उन्होंने देखा कि ऐसा परिवर्तन हुआ है इस व्यक्ति में, उसका नाम ही था मृगारी, तो इस नाम का अर्थ बताइए। मृग का अरि, अरि मतलब शत्रु। कोई ऐसा नाम बताइए जिसमें अरि का अंत हो, अरि शब्द, अरि मुरारी मतलब मुर नाम के असुर का शत्रु। कंसारी, एक भक्त है जिनका नाम है कंसारी दास, कंस के शत्रु। अच्छा, तो पढ़िएगा कि पर्वत मुनि क्या कह रहे हैं। तो जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। तो जो भी हमने अब चर्चा की कि भक्ति करने से सारे गुण आ जाते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मृगारी है। ठीक है ना? तो इसलिए रूप गोस्वामी आगे समझाते हैं कि और जितने भी सारे चीजें हैं, जैसे चित्त को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना, तपस्या, मन की शांति इत्यादि, ये सब ऐसे व्यक्ति में विद्यमान होते हैं या प्रकट हो जाते हैं जो कि भगवान का भक्त है। अच्छा, आगे प्रभुपाद रूप गोस्वामी अभी चर्चा करने वाले हैं भक्ति के 9 अंगों के बारे में। कोई घुमाएंगे चार्ट को? भक्ति के 9 अंग, नव विधा भक्ति, नवधा भक्ति, वो श्लोक आप सबको पता है ना, नव विधा भक्ति। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिर्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ हो गए। विष्णु, विष्णु से संबंधित। इति पुंसा अर्पिता विष्णु, पुंस मतलब मनुष्य। भक्ति चेन नव लक्षणा, ये भक्ति के नौ लक्षण हैं। क्रियेत भगवत अद्धा, जो व्यक्ति बड़े दृढ़ता से इनको करता है, प्रहलाद कहते हैं तत् मन्ये, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा विद्वान है। अधीतम, अधीतम उत्तमम, अधीतम मतलब जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जान लिया है, बहुत बड़ा पंडित या विद्वान है। तो जो व्यक्ति इस नवविधा भक्ति को करता है वही सबसे बड़ा विद्वान है, मैं ऐसे मानता हूं, प्रहलाद कहते हैं। तो भक्ति की परिभाषा यहां है। जब कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति मतलब क्या, हमें क्या करना चाहिए, तो हम कहते हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किस प्रकार से लगाना चाहिए, तो यहां इसका उत्तर है। अब रूप गोस्वामी आगे कहते हैं कि ये नव विधा भक्ति है, ये नौ अंग हैं भक्ति के, इनमें से एक भी अंग को कोई स्वीकार करता है हृदय से, तो इस अंग के द्वारा वो भक्ति की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है, भाव और प्रेम की अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। इसको एकांगा भक्ति कहते हैं। एकांगा भक्ति, एक अंग, एकांगा, अंगा क्यों, एक अंग क्यों नहीं, एक अंगा आ क्यों, स्त्रीलिंग है ना भक्ति, एकांगा भक्ति। और जो अनेक अंगों को का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अनेकांगा भक्ति। एकांगा और अनेकांगा। तो पहले रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं एकांगा भक्ति का, और वो देते हैं हरेक अंग के लिए एक उदाहरण। किस भक्त ने श्रवण करके अपना जीवन सफल बनाया, किस भक्त ने कीर्तन करके अपना जीवन सफल बनाया, ठीक है। आप सबने श्लोक लिख लिए या वैसे आप भागवत से भी देख सकते हैं, लगाइएगा। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, बाएं ओर आप अंग देख रहे हैं भक्ति के भिन्न अंग, और दाहिने ओर भक्त के नाम जिन्होंने उस अंग का पालन करके भक्ति में सफलता प्राप्त कर ली है। तो आप में से एक एक जो है एक अंग और उस भक्त का नाम लेते जाइएगा। मतलब परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया और जीवन को सफल बना दिया। तो भक्ति के ये नौ अंगों में से हर एक अंग पूर्णतया समर्थ है सफलता प्रदान करने के लिए। किसी एक भी अंग को कोई स्वीकार करता है हृदय से वो काफी है, एक से अधिक भी कर सकता है, परंतु एक भी अगर करे अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो श्रवण के लिए उदाहरण है परीक्षित महाराज, उन्होंने क्या श्रवण किया था? श्रीमद् भागवतम। अच्छा, दूसरा कोई पढ़िए। कीर्तन क्या किया था सुखदेव महाराज ने? श्रीमद् भागवत का कीर्तन किया था। और कोई पढ़िएगा अगला। स्मरण प्रहलाद महाराज, किस समय उन्होंने स्मरण किया था? हर समय, सदैव स्मरण करते रहे। आगे और कोई? पाद सेवनम लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी की, लक्ष्मी नारायण की आपने तस्वीरें देखी होंगी, चित्र देखे होंगे, तो लक्ष्मी देवी क्या कर रही होती हैं? भगवान विष्णु या नारायण के चरण सेवा कर रही होती हैं। तो यही करके उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया है। अच्छा, और कोई अगला वाला पढ़िएगा। अर्चनम पृथु महाराज, श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज का वर्णन आता है। आगे वंदनम, मैं आपको बोलना है, मैं नहीं पढ़िएगा। वंदनम अक्रूर, विशेष करके अक्रूर ने प्रार्थना कब की? जब वो मथुरा से वृंदावन आ रहे थे तब। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई भक्त वृंदावन आता है तो उसे इस भाव से आना चाहिए जैसे अक्रूर आए थे। अच्छा, आगे पढ़िएगा। दास्यम हनुमान, फिर साख्यम नहीं, सख्यम, सख्यम अर्जुन, और आगे पढ़िएगा। आत्मनिवेदनम बलि महाराज, कौन प्रकट हुए थे उस समय? वामन देव। तो ये नौ एकांगा भक्ति के वर्णन है, उदाहरण। और रूप गोस्वामी अनेक अंग ऐसे ही हम लिखा हुआ अलग से, परंतु एक अनेकांगा भक्ति के उदाहरण है अम्बरीश महाराज। पाद सेवनम का मतलब क्या है बताइए? लक्ष्मी देवी ऐसे चरण दबा रहे, वो ठीक है, वो तो अर्चना है। अच्छा, ये श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हरेक अंग का वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसको पढ़िएगा आप। तो पाद सेवनम का वर्णन इस प्रकार से करते हैं श्रील प्रभुपाद, लक्ष्मी देवी का उदाहरण करने के पश्चात वो कहते हैं कि इस प्रकार से अर्च्य विग्रह के चरणों की सेवा करना भी ये अर्च्य पाद सेवनम कहा जाता है। साथ साथ भगवान के मंदिर को चलना या गोवर्धन जाना या द्वारका मथुरा तीर्थ स्थानों में जाना, समझ लीजिए गोवर्धन की परिक्रमा करना, ये भी पाद सेवनम कहा जाता है। साथ साथ प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात भी करते हैं, तदीय सेवनम। तदीय, तदीय मतलब भगवान से संबंधित वस्तुओं की सेवा करना भी पाद सेवनम कहा जाता है। तो कौन सी हैं भगवान से संबंधित वस्तुएं या व्यक्ति? उदाहरण दीजिए। भक्त, वैष्णवों की सेवा करना, साथ साथ तुलसी सेवा, गौ सेवा, या यमुना जी की सेवा, गंगा जी की सेवा, ये सब पाद सेवनम में आ जाता है। साधारणतः जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के भीतर भक्तों के लिए कार्यक्रम बनाया है, उसमें हमें अनेकांगा भक्ति का लाभ मिल जाता है। हम श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सब चलता है। हालांकि दास्यम सख्यम उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं, परंतु अनेकांगा भक्ति हम लोग करते हैं। और अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से अनेकांगा भक्ति की, इसके बारे में श्रीमद् भागवत के 3 प्रसिद्ध श्लोक हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। कृपया उसको लगाइएगा। ये श्लोक आप सबने सुना है, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम्, ग्राणम् च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामं च दास्येन तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। सर्वांग भक्ति का वर्णन अभी आप इस श्लोक के द्वारा कीजिएगा। अम्बरीश महाराज ने कैसे सेवा की भगवान की, पहला लाइन, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अर्थात अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित किया। फिर आगे वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अर्थात अपने वाणी को भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करने में इस्तेमाल किया। आगे करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में लगाया। फिर श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, श्रुति मतलब कानों का प्रयोग कैसे किया, सत कथा सुनने में। तो भगवान अच्युत या कृष्ण की कथा सुनने में इस्तेमाल किया। फिर मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशो, लिंग मतलब अर्चा विग्रह, आलय मतलब निवास, तो लिंगालय का मतलब मंदिर। तो मंदिर में भगवान मुकुंद या श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन करने में लगाया, अपने आंखों का प्रयोग, दृशो अपने दृष्टि का प्रयोग। फिर तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, तद तद मतलब उनके, किनके, भगवान के, भृत्य दास, फिर गात्र स्पर्श संग संगम। तो क्या मतलब इसका, अपने शरीर स्पर्श, अपने शरीर का प्रयोग किया अन्य सेवकों के, भगवान के भक्तों के शरीर से आलिंगन करके। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, गात्र पास में उनका आलिंगन करना। घ्राणम चितत पाद सरोज सौरभे, घ्राणम घ्राणम नसिकों, नसिकों का जो सूंघने की जो की इंद्रिय है, तो उसका प्रयोग कैसे किया, तत्पाद, तत्पाद मतलब उनके चरणों के, सरोज फूल, सौरभ है, सौरभ सौरभ मतलब सुगंध। तो भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए जो फूलों का सुगंध सूंघ कर उन्होंने अपनी नसिकाओं का प्रयोग किया। फिर आगे श्रीमत तुलस्या रसनाम तद अर्पिते, तद अर्पिते मतलब उनको, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए हुए क्या, तुलसी दल और तुलसी मंजरी आदि का क्या किया उन्होंने, रसनाम, रसनाम मतलब स्वाद लेने की जो इंद्रिय है जिह्वा, जिह्वा का प्रयोग किया। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, इसका क्या मतलब, पादौ क्षेत्र मतलब तीर्थस्थान, पद मतलब मंदिर, क्षेत्र पद, तो हरि के तीर्थस्थानों में और हरि के मंदिर में जाके अनुसर्पणे उन्होंने अपने पैरों का प्रयोग किया। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने मतलब अपने सर का प्रयोग कैसे किया, हाँ भगवान के चरण कमलों में नमन करके पदाभिवंदने। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, क्या मतलब, न काम काम्यया, उन्होंने अपनी जो इच्छाएं हैं वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल की, च दास्य केवल उनके, उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं का प्रयोग किया। ऐसी कोई इच्छा नहीं की जो कि भगवान की सेवा से विपरीत थी, कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं की उन्होंने। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही मतलब, यथा उत्तम श्लोक जना आश्रया रति ही, उत्तम श्लोक कौन है, भगवान, जन जैसे हरि जन, या भगवान के जो जन हैं, जो भक्त हैं, हरि जन मतलब भक्त, हरि के जन, उसी प्रकार से उत्तम श्लोक जन मतलब भगवान के भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज, यथा उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज ने ऐसे किया, यथा जिस प्रकार से उत्तम श्लोक जनों ने, जैसे कि प्रहलाद महाराज हैं, तो उन्होंने ऐसा आश्रय लिया, आश्रया रति ही, उससे ऐसे भक्तों को जैसे प्रहलाद है उनको प्रसन्न किया, या तो फिर ऐसे कार्य किया जिसके माध्यम से उनके हृदय में ऐसे रति जागृत हुई जो कि उन भक्तों के हृदय में थी। ठीक है, तो ये अम्बरीश महाराज के अनेकांगा भक्ति है। बहुत कठिन तो नहीं लगा ना आपको, ठीक है। तो ऐसे आप आदत बना लीजिए, जब भी आप श्लोक पढ़ेंगे ना उसको शब्द भेद करके शब्दार्थ समझने का प्रयास कीजिए और फिर एक अंदाज लगाने का प्रयास कीजिए क्या है श्लोक का अर्थ।
चौथे अध्याय
पहले नहीं, ये नौवां होना चाहिए, गलती है, नौवां है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत मधुर है ये भी। तो अपने मन, अपने वाणी, अपने हाथ, अपने कान, अपने आंखें, अपना शरीर, अपनी नसिकाएं, अपना अपनी जिह्वा, अपने पैर, अपना सिर, अपनी इच्छाएं, कैसे उन्होंने भगवान की सेवा में इस्तेमाल की। और शेष में, अंत में, इस अध्याय के अंत में रूप गोस्वामी कहते हैं, पढ़िएगा आखिरी वाक्य इस अध्याय का।
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों, पहली भक्ति को आचार्यगण राय से ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं।
यह मर्यादा मार्ग भी कहते हैं। मर्यादा मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक भक्ति जो है ये बहुत ही दृढ़ता से शास्त्रों के नियमों के ऊपर आधारित है, या शास्त्रों के नियमों से वो बंधा हुआ है। ये मार्ग, विधि मार्ग, वैधि भक्ति, शास्त्रों के आदेशों के बाहर आप नहीं जा सकते। कभी कभी रागानुगा भक्ति में वो भले थोड़ा इधर उधर हो जाए अपने भाव की वजह से, हालांकि साधन भक्ति है रागानुग भक्ति भी, इसलिए इसमें भी नियमों का पालन सख्ती से होता है, परंतु आगे चल के धीरे धीरे से भले कभी नियमों का उल्लंघन हो जाए भाव के प्रवाह से, परंतु वैधी भक्ति में ऐसे नहीं होता, इसलिए इसे कभी कभी मर्यादा मार्ग भी कहा जाता है। तो अब अध्याय 15, रागानुगा भक्ति। तो हम सुन चुके हैं कि भक्ति के तीन, उत्तमा भक्ति के तीन वर्ग हैं, साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ठीक है ना। और साधन भक्ति के दो भाग कौन से, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो अभी अध्याय 2 से 14 तक हमने वैधि भक्ति की चर्चा की है ना। अभी हम 15वें अध्याय में पहुंचे हैं, तो 15वें और 16वें अध्याय में रागानुगा भक्ति का वर्णन हम पढ़ेंगे, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति, दोनों ही साधन भक्ति के अंग हैं। यहां जब आप पढ़ेंगे ना इस अध्याय को, 15वें और 16वें अध्याय को, एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि यहां एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो है रागात्मिका, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है रागानुगा। तो कोई यहां पर लिखेंगे बोर्ड के ऊपर पहले रागात्मिका और रागानुगा, कोई लिखेंगे बोर्ड पर रागात्मिका। अभी अध्याय पढ़ने के पहले हम थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, नहीं तो आगे थोड़ा कंफ्यूजन होने की संभावना है। और ऊपर एक शब्द लिख लीजिए राग, मराठी में राग मतलब गुस्सा, परंतु संस्कृत में राग मतलब आसक्ति। हाँ बैठिए, धन्यवाद। बस इन तीन शब्दों की चर्चा हम करेंगे, कल के लिए एक आपको बैकग्राउंड दे देंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राग मतलब तीव्र आसक्ति, और उस आसक्ति के बल पर फिर व्यक्ति के मन में और कोई भी विचार नहीं आता, पूरी तरह से 24 घंटे मग्न हो जाता है व्यक्ति, उसको राग कहते हैं। तीव्र आसक्ति पे आधारित जो तीव्र स्मरण होता है भगवान का वह तीव्र प्रेम हो जाता है, उसे राग कहते हैं। और जब ये फिर इससे आता है रागात्मिका। आत्मिका या आत्मा मतलब इस संदर्भ में आत्मा का मतलब है सार। तो जब भक्ति का सार जो है वो राग है तो उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो वृंदावन के निवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के समय वो रागात्मिका है, रागात्मिका भक्ति। आगे चल के इन शब्दों की परिभाषा भी होगी। और रागानुगा भक्ति, अब इसका शब्द भेद कीजिए। रागानुगा अनुगमन करना, किनका अनुगमन करना? जो राग भक्ति करते हैं उनका अनुगमन करना, ये रागानुगा है। तो रागानुगा और रागात्मिका में अंतर यही है। तो रागात्मिका ये सिद्धि है, सिद्धि भक्ति की, सिद्धि की चरम सीमा रागात्मिका। वृंदावन के निवासियों का, ब्रजवासियों का कृष्ण के समय में जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो रागात्मिका है। तो भक्ति की का सर्वोच्च स्तर माना जाता है उनके राग की वजह से। तो ब्रजवासियों के प्रेम की विशेषता है वो राग, जो कि और कहीं नहीं पाया जाता। इस प्रकार का राग जो है वो केवल वृंदावन में ही पाया जाता था। वृंदावन के प्रेम को राग कहते हैं। द्वारका में भी पाया जाता है लेकिन वृंदावन की तरह नहीं। तो ये वैशिष्ट्य है, विशेषता है वृंदावन के प्रेम का, ब्रजवासियों के प्रेम का, जिसको राग कहते हैं। और क्योंकि ये राग उनके भक्ति का सार है, आत्मा है, इसलिए इस भक्ति को रागात्मिका कहते हैं। तो ये सिद्ध, सिद्ध भक्ति की चरम सीमा है। ये सब सिद्ध भक्त हैं भगवान के। दूसरी ओर रागानुगा भक्त वो साधक हैं, सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो अनुगमन कर रहे हैं राग भक्तों का। वृंदावन के ब्रज, ब्रजवासियों के पदचिन्हों में चलना ये रागानुगा भक्ति है। ये साधक हैं क्योंकि ये साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गया? अच्छा, अभी आप बताइए। राग, रागात्मिका, रागानुगा तो कोई समझाइएगा। किस प्रकार की आसक्ति? तीव्र आसक्ति, जिससे क्या होता है? मग्न, बिल्कुल जो ध्यान है सब पूरी तरह से मग्न हो जाता है भगवान, एब्जॉर्ब जो कहते हैं, पूरी तरह से भगवान में मग्न हो जाता है उसका चित्त, और भगवान के सिवाय कुछ और उसको सूझता ही नहीं है। पूरी तरह से समा जाता है उसका चित्त भगवान में, तीव्र आसक्ति की वजह से। तो ये है राग। और राग विशेष करके किन भक्तों के भक्ति को संबोधित करता है? किन भक्तों का है ये प्रेम है? ये ब्रजवासियों का विशेष करके ये प्रेम है, ये विशेषता है ब्रजवासियों के प्रेम की, राग। इस प्रकार का राग जो वृंदावन में पाया जाता है वो और कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि ये राग सर्वश्रेष्ठ राग है। अन्य स्थानों में भी राग है परंतु क्या वृंदावन जैसा नहीं है, क्योंकि इनके भक्ति का सार ही राग है, आत्मा ही राग है, इसलिए इस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। तो बताइए रागात्मिका भक्ति क्या है?
प्रवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का उच्चतम स्तर
वो राग है। तो रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों का प्रेम है, विशेष करके जिसका गुण क्या है, सार क्या है?
राग की आत्मा है।
राग उनके प्रेम की आत्मा है। तो राग जो कि तीव्र आसक्ति, रागात्मिका भक्ति। और रागानुगा क्या है?
जो
जब ब्रजवासियों के पदचिन्हों में चलते हैं हम, वृंदावन के राग रागात्मिक भक्तों के पदचिन्हों में चलते हैं, तो ऐसे भक्ति का अनुगमन करना इसको रागानुगा कहते हैं। राग अनुग अनुगमन। राग एक विशेष बात है कि ये आसक्ति है। रागात्मिका मतलब वो और तीव्र हो जाता है, कि उनका सार ही ये है, उनका गुण ही लक्षण ही वो है, विशेष उनका लक्षण है रागात्मिका। कभी कभी राग भक्ति भी कहते हैं, और रागात्मिका और स्पष्ट करने के लिए कि उनके भक्ति की आत्मा ही ये आसक्ति है, तीव्र है। हाँ हाँ, परंतु वृंदावन का राग जो है बहुत ही विशेष है। तो रागात्मिका और रागानुगा कौन से सिद्ध अवस्था का है, कौन से साधक की अवस्था का है? रागात्मिका सिद्ध अवस्था, और सिद्ध अवस्था की चरम सीमा, और रागानुगा साधक अवस्था में। क्यों? नहीं, वो ठीक है, साधन भक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए साधक है। साधन भक्ति में वैधि भक्ति और साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति है ना, तो रागानुगा भक्ति भी साधन भक्ति का ही एक अंग है। तो साधन भक्ति साध्य साधन है, और आगे चल के भाव और प्रेम ये साध्य माने जाते हैं। सिद्ध भक्ति की अवस्था है भाव और प्रेम, और साधन भक्ति साधन ही है, साधक कहलाते हैं वो। तो जहां आप अध्याय 15 को खोलिए, 121 नंबर पेज में, यहां से अधिकतर जहां रागानुगा कहा गया है उसको आपको रागात्मिका समझना है, ठीक है ना? जहां किताब में अभी रागानुगा कहा गया है आपको समझना चाहिए कि ये रागात्मिका है वास्तव में। आपको बताएंगे धीरे धीरे से, कम से कम आप पहले पन्ने में सब जगह रागात्मिका ही कहने रहने दीजिए इसको। इसलिए हमने इतना समय भी निकाला इस बात को स्पष्ट करने के लिए। अब अंतर समझे ना दोनों में, रागात्मिका और रागानुगा। और चैतन्य चरितामृत में भी इस बात का वर्णन आता है, ठीक है? इस बात को इतना, इसका पचन कर लीजिए, फिर आगे हम रागानुगा भक्ति की चर्चा करेंगे। अभी धीरे धीरे जो है, अभी वो ऊपर 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 हम जा रहे हैं। अभी अब तक तो हम जमीन पे थे, है ना, वैधि भक्ति। अभी धीरे अभी आसमान में ऊपर जा रहे हैं, ऊंचे 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 अवस्था को, रागानुगा भक्ति, फिर आगे चल के भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। ठीक है, आज यही समाप्त करेंगे। अच्छा, कल सुबह भी आपके क्लास है ना, तो आपके लिए ज्यादा भारी हो जाएगा क्या अगर हम 3 से 6 बजे तक क्लास करें तो?
नहीं
होगा ना। तो ठीक है, कल ऐसा करेंगे, 3 बजे शुरू करेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा समय में आने के लिए, और 6 बजे तक करेंगे। बीच में 10 मिनट का आप 10 मिनट की छुट्टी दे देंगे ताकि आप थोड़ा चल के आए। ठीक है।